Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक किसान की घड़ी गुम हो गई थी। वैसे वो घड़ी बहुत कीमती तो नहीं थी, लेकिन किसान भावनात्मक रूप से उस घड़ी से जुड़ा हुआ था। बहुत ढूंढा उसने अपने खेत में, खलिहान में, घर में, सभी कमरे में, लेकिन वो घड़ी उसे मिली नहीं। अब उसे लगा कि क्या किया जाए। उसने सोचा, बच्चों की मदद लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने बुलाया, कहा कि जो भी मेरी घड़ी ढूंढ के देगा उसे मैं 10 रुपए इनाम दूंगा। अब सभी बच्चे लग गए ढूंढने में। बहुत देर तक ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी वो घड़ी मिली नहीं। थक हार के सबने हाथ खड़े कर दिए। अब किसान को भी लगा कि शायद मेरी घड़ी मिलेगी नहीं मुझे। एक लड़का आया, उसने कहा कि मैं ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेले ये काम करूँगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए। किसान को क्या चाहिए था, उसने कहा ठीक है, तुम प्रयास करो। अब वो लड़का अलग अलग कमरों में जाने लगा। थोड़ी थोड़ी देर वहाँ रहता था और फिर बाहर आता था। किसान के शयन कक्ष में वो गया और थोड़ी देर के बाद वो घड़ी लेकर के बाहर आ गया। किसान को बड़ी खुशी हुई, उसने कहा कि ये तो गजब हो गया, तुम्हें ये घड़ी मिली कैसे? तो उस लड़के ने कहा कि बस छोटी सी चीज़ मैंने की, हर कमरे में मैं जाता था, शांति से बैठता था और घड़ी की आवाज़ पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता था। आपके शयन कक्ष में मुझे ये घड़ी की सुइयों की आवाज़ सुनाई दी और फिर अलमारी के पीछे से मैंने वो घड़ी प्राप्त कर ली। उसने कहा कि केवल मन को शांत करने और एकाग्र करने की आवश्यकता थी और अकेले रहने की आवश्यकता थी। कितनी अच्छी बात है ना मित्रों, यदि हम शांति से एकांत में अपने आप में बैठते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, तो सचमुच बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई बार हम कोलाहल में बहुत सारे लोगों के साथ मिलके कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर जाने की, अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं करते और कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। तो क्यों ना हम सब ये संकल्प लें, प्रण लें कि थोड़ा वक्त तो अपने लिए जरूर निकालेंगे, थोड़ी देर शांति में और एकांत में बैठेंगे। आइए सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
एक बहुत अच्छी चीज़ है भ्राता जी कि हम थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें, शांति में बैठें या फिर कोशिश करें कि जो समस्याएं हैं उन पर हम फोकस करें, लेकिन शायद ये ना करके हम बाहर बहुत भाग दौड़ करते रहते हैं।
आप जब किसान की घड़ी की बात कह रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, मैंने बहुत सालों से अपने लिए एक नियम रखा हुआ है कि मेरी कोई भी चीज़ खो जाए तो मैं उसे ढूंढता नहीं, और मैं संकल्प करता हूँ कि 5-7 मिनट में ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी, मैं तो मास्टर ऑलमाइटी हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो चीज़ सहज ही प्राप्त हो जाती है। सत्य यही है कि हर समस्या का समाधान हमारे पास है, हमारे अंतर मन में समाया हुआ है। हम केवल एकाग्रचित होकर योग अभ्यास करें। बात केवल इतने तक नहीं कि शांत में बैठकर घड़ी की सुइयों की आवाज को सुना जाए, लेकिन शांत में बैठकर अपने अंदर झांका जाए, बिल्कुल अपने चित्त को स्थिर कर लिया जाए, एक प्रॉपर आंसर अपने अंदर से हमें मिल जाता है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है। ये बहुतों के अनुभव है। इसलिए मनुष्य को जब कोई समस्या आ घेरे, जब कोई ऐसी दुविधा उसके जीवन में आ जाए, तो उसको आवश्यकता से ज्यादा परेशान नहीं हो जाना चाहिए। मैं शब्द इसलिए बोला कि थोड़ा परेशान तो मनुष्य होता ही है, लेकिन थोड़ा समझदारी का परिचय देते हुए, थोड़ा अच्छा अभ्यास करते हुए, थोड़े जो ज्ञान लिए हुए लोग हैं, भाई बहने हैं, ज्ञान को थोड़ा याद करो, बाबा भी तो हमारे साथ है, इस बात को थोड़ा याद करके अपने चित्त को कुछ देर में शांत कर दो, तो जल्दी पता चलेगा कि समाधान ये है। क्योंकि आजकल जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, वो देखा जाता है कि बीज जो उनका है, मन का बहुत विस्तार, मन में बहुत उलझने, चित्त का शांत ना होना, और बहुतों के मन की स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी उनका चित्त शांत नहीं होता, बल्कि होता यह है जितना जितना वो कोशिश करते हैं और न जाने कहां कहां के विचार उन्हें आ घेरते हैं और समस्या और बढ़ जाती है। एक वो समस्या थी, दूसरी उनकी अपनी समस्या बढ़ गई, इसमें राजयोग हमें बहुत मदद करता है, ईश्वरीय ज्ञान बहुत मदद करता है। तो हम इन चीजों को जरा ध्यान दें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मुझे मैं रुक इसलिए रहा हूँ, आज ही कोई एक लेडी मेरे पास आई, वो अपनी बहुत सारी समस्याओं का वर्णन कर रही थी। जब मैंने उसे कहा है तो समस्याएं बहुत छोटी हैं, आप बहुत बड़े हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो गई, ये सचमुच छोटी हैं क्या? मैंने कहा तो आपने बड़ी बना दी है, आप इस चीज को जरा स्वीकार कर लो, ये तो कलयुग का अंत है और ये सब व्यवहारिक बातें, रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत मन मुटाव ये चलता रहता है, अब योग अभ्यास बढ़ा के तो देखो ये सब कैसे समाप्त होती हैं। तो मैं देखता आता हूँ कि समस्याओं को समस्या मान लेना ही सबसे बड़ी समस्या लगती है। कई लोग छोटी छोटी बातों को बड़ी समस्या मान लेते हैं, वो बहुत छोटी होती हैं। इसलिए हमें अपने स्वमान में रहना चाहिए, इससे हमारा स्पिरिचुअल लेवल ऊंचा होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सब बातें छोटी लगती हैं और सच वो चित्त को शांत करना सरल होता है और तब हम अपने अंदर झांक सकते हैं और देखेंगे न केवल समस्याओं का समाधान, हमारे यहाँ हमारे अंदर में अथाह भंडार है सुख का, शांति का, प्रेम का, शक्तियों का, आनंद का, पवित्रता का। उस भंडार को हम देखें और उजागर करें तो जीवन कमल खिल जाएगा।
मतलब अंतर की यात्रा की आवश्यकता है और शायद व्यक्ति उसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। प्रताप जी, जब सिचुएशन होती है ना, जैसे आपने कहा कि बात भले छोटी होती है लेकिन उस व्यक्ति को बहुत बड़ी लग रही होती है, उस समय के लिए बड़ी समस्या ही होती है उसके लिए, और जब तक उसका स्पिरिचुअल लेवल ऊपर ना हो तब तक तो सचमुच उसके लिए बड़ी समस्या है। तो ऐसे में ठीक है, वो लड़का था, घड़ी उसकी नहीं थी तो वो तो शांति से बैठ के देख पाया, लेकिन जिसकी प्रॉब्लम होती है ना, उसका मन शांत नहीं होता, स्थिर नहीं होता। तो क्या सजेस्ट करेंगे उस समय के लिए? वैसे तो यदि वो लंबे समय से अभ्यास कर रहा हो तो शांत होना सहज है, लेकिन तत्क्षण क्या किया जा सकता है?
देखिए, घड़ी का हम उदाहरण ले, मान लो घड़ी सस्ती नहीं महंगी भी थी और वो खो गई है और 10 बच्चों ने प्रयास कर लिया, वो नहीं मिल रही है। अब उस किसान को ये सोचकर अपने चित्त को शांत कर देना चाहिए था कि चलो खो गई, इससे अच्छी ले लेंगे, क्या है, दूसरे काम पे ध्यान दे। अब इसी चीज में अपने मन को भटकाए रखना, उलझाए रखना, इससे तो हमारे दूसरे काम भी बिगड़ जाएंगे, छोड़ देता हूँ इसे, दूसरी तरफ अपना कंसंट्रेशन करता हूँ, चित्त शांत हो जाएगा। तो मनुष्य का क्या है कि एक वस्तु से लगाव बहुत होता है, वो बाकी सब काम छोड़ के घड़ी पाना चाहता है, चाहे वो 20 रुपए की हो, चाहे वो ये आजकल मिलती है ना नंबरों वाली सस्ती 50 रुपए की मिल जाती है, वही हो, वो उसके पीछे अपना हजारों का काम बंद कर लेता है। ये मनुष्य सेंसिटिव जो हो गया ना कुछ चीजों के प्रति और जुड़ गया है गहराई से, उनमें आसक्त हो गया है, इससे थोड़ा अपने को डिटैच करना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी हैं, घड़ी तो चलो छोटी है, मान लो कोई बड़े बड़े नुकसान हो जाए तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि चलो इससे बड़ा नहीं हुआ, बच गए हम, सब कुछ ठीक ठाक है, प्रभु को धन्यवाद दें और चित्त को शांत करें। तो एक अच्छे विचार ही हमारे चित्त की इन उलझनों को शांत करते हैं। इसलिए चाहे वो ज्ञान मार्ग पे चलने वाली आत्मा हो चाहे ना हो, सबको अपने पास थोड़े अच्छे विचार तो अवश्य रखने चाहिए।
बिल्कुल, मतलब अच्छे विचार से ही मन हमारा शांत हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं देखता हूँ लोग शांत नहीं हो पाते जब तक कि चीजें मिल ना जाए। बहुत सारी ऐसी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं ब्रदर जी, कुछ फोन करते हैं, कुछ मेल्स भी करते हैं कि भाई मेरी फलानी जो अच्छी सी चीज थी ना वो कहीं गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, या ये चीज ऐसी थी मिल नहीं रही है, क्या इसके लिए कुछ विशेष अभ्यास किया जा सकता है कि मेरी कोई चीज गुम हो गई है, अब मुझे वो चीज पानी है, मिल नहीं रही?
बिल्कुल किया जा सकता है और ऐसे सफल प्रयोग हुए हैं। एक आम चीज जो लोगों की आजकल खोती है, मोबाइल खो गया। अब मुझे कहा कि क्या करूं, अभी मोबाइल खोने की तो चलो बात नहीं, उसमें जो माल भरा होता है
सारे कॉन्टेक्ट नंबर हमारी सारी डिटेल्स उसी में
है। तो ऐसा मन उसको लगता है हम तो खाली हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास,
बिल्कुल अकेले हो गए,
किससे बात करें, कैसे करें, नंबर तो कोई किसी का याद नहीं रखता आजकल। तो मैंने उनको बताया, तुम एक संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, करते रहो इसको और संकल्प करो कि कल मेरा मोबाइल मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे कई अनुभव हुए कि मोबाइल उनको मिल गए, किसी ने ला के दे दिया, किसी की खाट पे लोग छोड़ गए, मैं समझ गया था खाट पे तो वो छोड़ गए जिन्होंने चोरी कर लिया था, तो इनका जो अभ्यास था उससे उनकी अंतर चेतना जाग गई और उसे लगा के नहीं चोरी तो गलत है, मैं रखा चुपचाप उसकी बेड पे रख गया वो। तो ये अभ्यास बहुत ही अच्छे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास कर लें, योग लगता हो तो थोड़ा थोड़ा योग भी लगा लें और एक विजन बनाएं कि कल जैसे मोबाइल मेरे हाथ में है या मेरी बेड पर आ गया, ऐसी किसी भी चीज के लिए तो चीजें मिल जाती हैं। मान लो वो चोरी भी हुई है तो लोग उसको भी रिटर्न कर देते हैं, ऐसा भी तो एक केस हुआ था, हमने पीछे चर्चा की थी, चोर ले गया था बैग लेकिन वापिस दे गया, बिल्कुल पूरा का पूरा दे गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। हमारे वाइब्रेशंस दूसरे के मन के दूषित विचारों को बदल देते हैं।
बड़ा ईमानदार चोर।
हाँ, ईमानदार चोर बन गया था, पहले ईमानदार नहीं था और पीछे बन गया।
मतलब हमारी वाइब्रेशन लोगों की वृत्ति को भी चेंज कर सकते हैं। राधे जी, कुछ हमारे पास SMS आए हैं, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ आपको। ये कहते हैं कि मैं रिटायर्ड कर्नल हूँ और मेरा बेटा मेजर है, पिछली जनवरी में ही हमने उसकी शादी की थी लेकिन बेटे और बहू के बीच कुछ अनबन हो गई तो बेटी अब अपने घर चली गई है और अब उसने FIR दर्ज करा दिया है। हमने बहुत कोशिश की कि हम बातचीत करके मामले को सुलझा लें लेकिन उसके अंदर बहुत ही बदले की भावना है, वो ना तो वापस आ रही है और ना ही डिवोर्स के लिए भी तैयार हो रही है और ना ही किसी भी प्रकार की बात सुन रही है। उसने इस रूप में FIR दर्ज करवाया है कि उन्होंने मुझे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान किया है लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। अब हम थोड़े समय से विद्यालय से जुड़ गए हैं, कृपया बताएं कि हम क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए।
ये केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं समाज में
जी।
पति पत्नी का न बनना ये एक आम बात होती जा रही है। भारत में ये सब नहीं था, हमारी कल्चर बहुत महान थी, पति पत्नी क्या और भी जो रिलेशन है, एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान की भावना यहाँ रहती थी, कोई किसी को इस तरह परेशान भी नहीं करता था। भले इन्होंने तो कहा भाई हमने तो किस तरह से उसे परेशान किया ही नहीं, पर कई लोग करते भी हैं, कई लोग फिर नहीं करते तो उनसे बदला लेने के लिए वो आत्माएं ऐसे FRI दर्ज करा देती हैं। केस तो इनका निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेटेड ही है क्योंकि बहनों को आजकल कानूनी सुरक्षा ज्यादा प्राप्त है, उनकी ज्यादा सुनी जाती है, इसका कहीं ना कहीं वो मिसयूज भी कर रही है, करना तो नहीं चाहिए क्योंकि कर्म की गति किसी मनुष्य को छोड़ती नहीं है
जी।
अब इनको देखिए, अगर लड़का भी अपनी पत्नी से अच्छे संबंध रखता था, कुछ तो हुआ है इनके बीच में, देखो ऐसे तो कोई घर छोड़ के जाएगी नहीं ना, क्योंकि शादी हो रहा, घर में रहना, एक गृहस्थ चलाना, ये एक बहुत सुंदर चीज है ना, इसको छोड़ के कोई चल दे कि मैं नहीं आऊंगी अब दोबारा यहाँ, तो वो भी तो
जब तक कोई बड़ी बात ना हो जाए तब तक इतना बड़ा
नहीं होता है, तो कुछ तो हुआ है, नहीं तो अकेला रहना, वो भी एक लेडी अकेला रहे, छोटी आयु की लड़की अकेला रहे, माँ बाप से भी उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है और अगर भाई भाभी हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, समाज भी उसको दूसरी नजर से देखने लगता है, भले वो कितनी भी सफाई दे कि उन्होंने ये किया, पर लोग आजकल सोचते तो है ना कहीं दोष तो इसका भी होगा। खैर, इस केस में लड़का अगर बहुत अच्छा है, समझदार है और उसके मन में अपनी पत्नी के लिए प्यार और सम्मान की भावना है तो वो सवेरे उठकर 5-7 मिनट उसको गुड वाइब्रेशंस दे और फिर माइंड टू माइंड उससे बात करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, ये अभ्यास करके 5-7 बार उसे आत्मा देखकर संकल्प करे, यू आर माई गुड फ्रेंड, हम दोनों बिल्कुल एक साथ रहेंगे, बहुत अच्छी तरह रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, मनमुटाव की बात ही नहीं है, रोज ये काम तो उसे करना क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई है ना
जी।
बाकी मैं सोच रहा था कि वैसे तो बहुत अच्छी बात है, ये लोग अब भगवान से मिलने जा रहे हैं। देखिए आजकल ये हो रहा है कि जब लोगों के जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो वो कोई ना कोई स्पिरिचुअल पाथ चुनते हैं और अगर कोई ब्रह्मा कुमारी के पास आ जाए तो मुझे ये कहते हुए कोई हिचक नहीं, माना वो प्रभु मिलन की ओर उसके कदम बढ़ गए हैं,
मतलब ये समस्या जैसे उनको भगवान के करीब
ले जा रही है। तो आजकल बहुत मैं देख रहा हूँ कि लोगों की बड़ी बड़ी समस्या उनको भगवान के समीप ला रही है, स्पिरिचुअल बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। जो मैं केस सुना रहा था उसमें भी वो बहन अपने पति से परेशान होके ज्ञान योग के मार्ग पे चल पड़ी लेकिन पति के लिए बहुत बदले की भावना, तो मैंने कहा बदला क्यों लेती हो, धन्यवाद दो अपने पति को जिसने तुम्हें भगवान से मिला दिया। अच्छा ऐसा करूं क्या? मैंने कहा शिव बाबा को भी धन्यवाद दिया करो, तुमने मुझे ऐसा पति दिया जो उसने मुझे तुमसे मिला दिया।
पति ने परमेश्वर से मिला दिया।
तो मैंने कहा पति परमेश्वर नहीं, तुम्हारे पति ने परमेश्वर से तुम्हें मिला दिया। तो देखिए ये एक अच्छा पहलू भी है जीवन के लिए। और मैं देख रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि ये प्रभु मिलन का समय चल रहा है, वो हमारे जीवन को निखार रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं मनुष्य को उसकी ओर ला रही हैं। तो ये अच्छी बात भी है। लेकिन आप आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम उस आत्मा के निमित्त अपनी बहू के निमित्त योग अभ्यास भी कर दें, और उसके लिए मन से बदले की फीलिंग बिल्कुल निकाल दें। उसके मन में बदले की फीलिंग है लेकिन आपकी प्रेम की और शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस उसकी बदले की फीलिंग्स को समाप्त कर देंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल सर्टेन है। आप रोज आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम भले सेवा केंद्र पर जाकर योग अभ्यास कर बहुत निश्चिंता पूर्वक ये सब कुछ ठीक होने वाला है। घर में जैसे बच्चे लड़ जाते हैं कोई बात नहीं, फिर मेल हो जाएगा और ये बात ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल। तो कितने दिन वैसे विशेष करके अभ्यास करें?
देखिए इन्हें पहले 21 दिन करना चाहिए और अगर समस्या हल नहीं होती तो 3 मास तक कर लेना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करेगा इनका योग कितना पावरफुल है और ये कितना जल्दी उसके मन के वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करने में सफल होते हैं।
बिल्कुल। तथा जी अगला SMS हमारे पास आया है, ये कहते हैं कि मान लीजिए ए कोई बुरा कार्य करता है बी के साथ, बुरा व्यवहार करता है, तो ए ने तो बी के साथ अपना कार्मिक अकाउंट बनाया, लेकिन बी इसे क्या समझे कि उसका भी कार्मिक अकाउंट बन रहा है या उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, और ऐसे में बी को क्या करना चाहिए? बड़े समझदार हैं ए और बी करके इन्होंने अपना क्वेश्चन रखा है।
ए भी अल्लाह का पुत्र है और बी भी अच्छा बाबू है, तो दोनों ही समझदार है, कोई बात नहीं। देखिए एक व्यक्ति हमसे बुरा व्यवहार करता है, इसके पीछे केवल कर्मिक अकाउंट ही काम नहीं कर रहा है। मान लो ए के मन में बी के प्रति पहले से ही कुछ बुरी भावनाएं हैं, इसलिए वो भावनाओं के अनुरूप व्यवहार कर लेता है, या ए को कोई और बुरा व्यवहार करता है, वो इरिटेट रहता है तो बी पर उतार देता है सारा। तो बी को ऐसा सोचना चाहिए कि वो एक अच्छी स्थिति में रहकर ए के विचारों को, उसके वाइब्रेशंस को, उसके संस्कार को बदले। जब वो उसको बुरा व्यवहार कर रहा है तो ये मुस्कुराए और नो रिएक्ट, बस नो रिएक्शन, ऐसी भावना रख ले। तो थोड़े दिनों में ही दूसरे व्यक्ति को, ए को, अपनी भूल रियलाइज होने लगी कि देखो ये कितना पावरफुल है, कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, और बीच बीच में जवाब भी देना है तो बहुत पॉजिटिव, बहुत स्वीटली, सॉफ्टली, तो परिवर्तन हो जाएगा। बाकी समझना यही चाहिए कि अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, हम और हल्के हो रहे हैं। हम अगर रिएक्ट करेंगे तो हम अपने हिसाब किताब को और क्लिष्ट बना सकते हैं, इसलिए नो रिएक्शन और स्माइलिंगली, सॉफ्टली, स्वीटली अच्छे उत्तर भी दे देना।
मतलब क्लियर हो रहा है,
हाँ,
मेरा क्लियर हो रहा है और वो अपना कर्ज ले रहा,
हाँ,
है, हम ये मान के चले। लेकिन कई बार कठिन नहीं हो जाता प्रता जी? मतलब हम बहुत अच्छी स्थिति में यदि नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, या मेरी मेंटल स्टेज उतनी हायर नहीं है जैसा हम कहते हैं, वैसा नहीं है, तो बार बार जब ए मुझे ऐसा कह रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो बी भी थोड़ा परेशान,
इरिटेट
होगा, इरिटेट हो जाता है।
बिल्कुल ये ठीक बात है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी जो व्यक्ति है वो अनेक चीजों से प्रभावित रहता है। मान लो आज वो ठीक से सोया ही नहीं है और तो उसको एक इरिटेशन सा है,
ये तो उसकी प्रॉब्लम, हाँ, बी की क्या प्रॉब्लम?
तो बी की प्रॉब्लम ये कि उसका साथी है वो, तो वो अपना जो टेंशन है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। ये ह्यूमन नेचर है कि जो पहले सामने आ गया
उस पे
वो उबल जाएगा और अपना सबको निकाल देगा। तो इसलिए मैंने कहा कि बी को चाहिए उसको अच्छे वाइब्रेशंस देना, उसकी भी समस्या को समझना। लेकिन मान लो कहीं ऐसा है कि बिना कारण ही कोई व्यक्ति चढ़ा बैठा है, बार बार बुरा व्यवहार करता है, तो एक बार ऐसे में उसे आंख दिखा देना भी कल्याणकारी होता है। लेकिन आंख लाल करके नहीं दिखानी चाहिए, मतलब अंदर गर्म नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन एक एक्ट जैसा करते हुए, ताकि दूसरा व्यक्ति बार बार ऐसा व्यवहार न करे। क्योंकि कई लोग इस संसार में, कलयुग का अंत है ना, कई लोग इस संसार में शांति की भाषा को कम समझते हैं। थोड़ा सा ऐसा वैसा बोल दो वो फिर सदा के लिए शांत हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति रोज रोज ही आपसे बुरा व्यवहार करता है और एक बार आपने उसको सीधा उत्तर दे दिया तो वो समझने लगेगा यार ये भी कुछ है। नहीं तो लोग ये समझते हैं ये बड़ा कमजोर है, चलो बोलते रहो इसको
जी।
और फिर बाहर जाके खुश भी होंगे कि देखा आज फिर हमने उसका उल्लू बना दिया। हाँ। आज फिर हमने उसको ऐसा कर दिया। तो इसलिए एक बार अच्छा जवाब दे देना, थोड़ा पावरफुल ढंग से दे देना
जी,
क्रोध रहित रहते हुए, इसकी बहुत जरूरत होती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल हमारी प्रैक्टिस है वो ये है कि अगर हम अच्छे स्वमान में रहते हैं, अगर हमारा योग अभ्यास अच्छा है तो हमारे वाइब्रेशंस इतने अच्छे होते हैं कि दूसरा फिर ऐसा मिसबिहेव करने का सोचता नहीं है।
बिल्कुल, मतलब अपनी स्थिति ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार रहता है जी, मान लीजिए मैं ओम शांति वालों का एग्जांपल लेता हूँ। अब जो लोग आते हैं यहाँ ओम शांति के आश्रम में आते हैं तो वो तो रिएक्ट नहीं करेंगे। अब तो सामने वाला बोला जा रहा है। अब जब जैसे आपने कहा एक बार अच्छा रिएक्शन दे दो, कुछ कह दो, तो फिर वो सामने वाला कहता है तुम तो आश्रम में जाते हो, तुम अपनी शांति छोड़ के अशांत हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तुमने क्या सीखा आश्रम में। हाँ, तो लोग ऐसे भी कमेंट्स
करते हैं। बिल्कुल ये कहेंगे, इसलिए मैंने कहा शांति खोकर नहीं, पावरफुल तरीके से
जी,
जिसमें हमारी इनर पीस बराबर बनी रहे और दूसरे को भी ये महसूस होगा कि बहुत जरूरी है।
आज के सुंदर प्रकाश के लिए ब्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच समस्याओं के तो अंबार हैं, मैं ये कहूंगा कलयुग है तो समस्याएं तो हैं ही, लेकिन फिर भी यदि थोड़ा सा वक्त, जैसे शुरुआत मैंने की थी कि हम अपने लिए निकालते हैं, थोड़ा अपने अंदर जाते हैं, थोड़ा शांति में बैठते हैं, तो हमें खुद ब खुद ये एहसास होने लगता है कि कैसे हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और यदि उसमें हम अपना कनेक्शन सुप्रीम के साथ जोड़ लें तब तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाती है कि जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है शायद वो ऊपर से परमात्मा मुझे टच कर दें। अल्बर्ट आइंस्टीन आप जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, वो कहा करते थे कि जब कभी मुझे किसी समस्या का हल नहीं मिलता ना तो मैं साइलेंस में चला जाता हूँ और शांति में जाकर के विचार करता हूँ उस विषय पे तो मुझे उसका हल मिल जाता है। देखिए एक बड़ा सा वैज्ञानिक भी शांति के महत्व को समझता था। खिलाड़ियों को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है कि आप थोड़ी देर शांति में बैठें, साइलेंस में बैठें, मेडिटेशन करें, क्योंकि जितना आपका अंतर्मन शांत होगा उतना ही बाहर आप सफल होंगे। यदि हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ियों को आप देख लें, सुनील गावस्कर हों या सचिन तेंदुलकर हों या राहुल द्रविड़ हों, आप जानते हैं कितनी कूल और काम रहे हैं और उनकी सफलता हम सब जानते हैं, सारे विश्व में वो विख्यात हैं। तो हम भी मित्रों यदि अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं थोड़ी सी शांति में अंदर में बैठें, अंदर जाएं और अपने आप को देखें, ऑब्जर्व करें कहां कहां प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है। यदि हम थोड़ा अंदर जाएंगे ना सचमुच हमें समाधान मिलने लगेगा और हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ने लगेंगे। तो आपका जीवन सभी समस्याओं से मुक्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत।